رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهدن سهلا إذا شئت. إن شاء الله آج هم تھوڑی سی بات کریں گے ہم دعائیں اور رمضان کیسے ساتھ ساتھ ہیں، یعنی اس مبارک مہینے میں الحمدللہ ہم سب انٹر ہو چکے ہیں اور تقریباً ایک عشرہ، پہلا عشرہ جو ہے وہ ختم ہونے کے قریب ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مبارک مہینے میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کس طرح اپنا تعلق جو ہے وہ ڈیولپ کریں، رائٹ. اس میں بہت ساری چیزیں، بہت ساری عبادات ہیں، رائٹ، بہت ساری نیکیاں ہیں جن کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے. لیکن یہ نیکیاں یا عبادات کیسے حاصل ہوں؟ دعا، دعا انسان کی زندگی کا حل ہے، ہر مسئلے کا حل ہے. اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد سے پتہ چلتا ہے، آپ نے فرمایا کہ دعا عبادت ہے. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت کی روح ہے. یہ دونوں حدیث جو ہیں ترمذی میں روایت ہے. اور اگر آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو حضرت آدم علیہ السلام کو جو سب سے پہلی چیز سکھائی گئی وہ کیا تھی؟ وہ دعا ہی تھی، رائٹ. یاد ہوگا آپ کو، جب اللہ تعالیٰ کے حکم پر وہ پورے نہیں اترے تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ نظر کرم فرمائی اور انہیں کیا دعا سکھائی تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یعنی کیا ترجمہ اس کا؟ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی، ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. سورہ اعراف آیت نمبر 23. اگر آپ غور کریں تو ہر عبادت کے لیے کچھ نہ کچھ ریکوائرڈ ہے، لائک جگہ، وقت. لیکن دعا ایسی عبادت ہے جس کے لیے کوئی وقت، کوئی جگہ مقرر نہیں ہے. ہر لمحہ، ہر گھڑی انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر سکتا ہے، مانگ سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر ایک نظر ڈالیں تو یوں لگتا ہے کہ آپ کی زندگی کا کوئی لمحہ، کوئی گھڑی ایسی نہیں گزری جو دعا سے خالی ہو. آپ ان کی پوری زندگی کو اٹھا لیجئے، سوتے جاگتے، سونے جاگنے کی دعا، اچھا یا برا خواب دیکھنے کی دعا، گھر سے نکلنے یا داخل ہونے کی دعا، مسجد میں آنے جانے کی دعا، آئینہ دیکھنے کی دعا، کھانے پینے کی دعا، میزبان کی دعا، مہمان کی دعا، بارش کی دعا، توبہ کی دعا، پناہ مانگنے کی دعا، اللہ سے بخشش طلب کرنے کی دعا، پسندیدہ اور ناپسندیدہ چیزوں کو دیکھنے کی دعا، غصے کی وقت کی دعا، نظر بد کی دعا، غم اور پریشانی کی دعا، آزمائشوں کے وقت کی دعا، سفر کی دعا، چاند دیکھنے کی، نیا لباس پہننے کی، نیا پھل کھانے کی، شادی کی، آندھی طوفان کی، گرج چمک کی. غرض یہ کہ کوئی چیز ایسی نہیں جس کے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی دعا نہ مانگی. صحیح احادیث سے ثابت شدہ دعاؤں کی تعداد 700 کے لگ بھگ ہے، 700. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اہل ایمان کو مختلف واقعات کے حوالے سے 70 سے زیادہ دعائیں سکھلائیں. اس تعداد سے ہم دعا کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے، اسے ترمذی نے روایت کیا. دعا قبول ہونے کے دو امکانات ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ فوراً ہی دعا قبول ہو جائے، رائٹ. جیسا کہ ہمیں حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے تین افراد کا واقعہ بیان کیا تھا، جو یاد ہوگا آپ کو، جو دوران سفر طوفان میں پھنس گئے تھے، غار کے اندر بند ہو گئے تھے وہ، رائٹ. उन्होंने अल्लाह सुबहाना ताला से दुआ मांगी जो उसी वक्त कबूल की गई, राइट। इसके बरक्स अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ को आप देखें जो उन्होंने मांगी थी, रब्बना वब असफीहिम रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमता वयुज़क्कीहिम, ऐ हमारे परवरदिगार इन लोगों में खुद ही इनकी कौम से एक ऐसा रसूल भेज जो उन्हें तेरी आयात सुनाए, उन्हें किताब और हिकमत सिखाए और उनकी जिंदगियां सवार दे। सूरह बकरा आयत नंबर 129। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये दुआ कब कबूल हुई थी? ये दुआ हज़ारों साल के बाद कबूल हुई थी। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि मैं अपने बाप इब्राहिम की दुआ का नतीजा हूँ, जिसका मतलब ये कि दुआ कबूल करने में भी अल्लाह ताला की मसलहत और हिकमत कार फरमाए, चाहे तो फौरन कबूल कर ले और चाहे तो कम या चाहे तो ज़्यादा अरसे के बाद कबूल कर, राइट। तो असल बात क्या है, समझने की बात क्या है कि दुआ को इबादत समझकर मांगा जाए, किसी भी हाल में इंसान मायूस और नाकाम नहीं होता दुआ मांगकर। अगर इंसान की मतलूबा जो भी हाजत है वो फौरन पूरी हो जाए तो ये सरासर अल्लाह सुबहानहु ताला का इनाम और फजल है, और अगर दुआ कबूल नहीं भी हो रही तो भी मांगने वाले को किसी भी हाल में मायूस नहीं होना चाहिए, राइट। क्योंकि ऐसा है नहीं कि दुआ कबूल नहीं होती, दुआ कभी भी ज़ाया नहीं जाती। उसके तीन दर्जे होते हैं, एक तो यही कि वो दुआ जो मांगी गई है वो उसी वक्त पूरी हो जाए वैसे के वैसे जो आपने मांगा, दूसरा अल्लाह ताला उससे बेहतर दे देते हैं, राइट, और थोड़ा वक्फे के बाद देते, तीसरा हो सकता है कुछ भी ना हो, ना पहली वाली बात हो ना दूसरी वाली बात हो, बल्कि उसके बदले में अल्लाह सुबहाना ताला आखरत में इंसान के लिए बेहतरीन चीज़ रख देता है, और आखरत में जब इंसान उसका बदला देखेगा तो उस वक्त तमन्ना करेगा कि काश काश मेरी दुनिया में कोई दुआ कबूल ही ना होती। दुआ जो है बेहतरीन हदिया भी है, तोहफा है, राइट। यानी कोई आपके साथ अच्छा करे तो आप उसको दुआ दें, जैसे बच्चे ही अपने घर में बच्चे होते हैं, आपने उनसे पानी मांगा तो आपने उसने पानी ला के आपको पिलाया तो आप उसके बदले में उनको दुआ दे दीजिए। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी कि आप सहाबा इकराम की दीनी खिदमात पर खुश होते तो उन्हें बहुत अच्छी सी दुआ दिया करते। क्योंकि देखिए दुआ जो है मोमिन का हथियार है, ये भी हदीस है, ठीक है। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसे हालात से यकीनन दो चार होता है जब उसे लगता है कि सारी दुनिया के सहारे जो हैं वो टूट गए, उम्मीदें ख़त्म हो रही, ज़ाहरी असबाब और वसाइल नाकाम हो चुके होते हैं और करीब तरीन अजीज़ और अकारब पर एतमाद नहीं रहता, यहाँ तक कि भाई भाई के साथ बात नहीं करता, बीवी शोहर के साथ, औलाद अपने वालदैन के साथ खुलकर बात नहीं कर पाते, तो ऐसे वक्त पर इंसान की क्या कैफियत होती है कि वो ख़ुद को बेनतहा तनहा महसूस करता है, बेबस महसूस करता है, बेकसी का आलम उसके अंदर सवार होता है। तब इंसान के अंदर से एक आवाज़ उठती है, क्या, कि एक सहारा अब भी मौजूद है, एक दरवाज़ा अब भी खुला हुआ है जहाँ इंसान अपने दुख दर्द मसाइब की दास्तान हर वक्त एनी टाइम बयान कर सकता है। और इस कैफियत का अल्लाह सुबहाना ताला ने कुरान पाक में खुद ही जिक्र फरमाया, अम्मा युजीबुल मुत्तर इज़ा दुआ व यक्शिफुस्सु व यजअलुकुम खुलफा अल अर्द अइलाहुम अल्लाह क़लीलुम क़लीलम मा तज़क्करून। यानी भला कौन है जो बेकरार की दुआ कबूल करता है जब वो उसे पुकारता है और उसकी तकलीफ दूर हो जाती है और वो ज़मीन में खिलाफत अदा करता है, अल्लाह के सिवा कोई और भी है। ये बिल्कुल ऐसे ही ना जब यूनुस अलैहिस्सलाम ने को मछली ने खा लिया था, निगल लिया था, राइट, तो आपने उसके पेट में क्या क्या दुआ की थी, हाँ, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, राइट। और ऐसी बेशुमार मिसालें आपको मिलेंगी कुरान में अंबिया इकराम की कि उन्होंने मुश्किल वक्त में अल्लाह सुबहाना व ताला को पुकारा और अल्लाह सुबहाना व ताला ने उनकी दुआ को कबूल किया। سورہ غافر آیت نمبر 60 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخری. اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو, میں تمہاری دعا قبول کروں گا. جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں عنقریب وہ جہنم میں داخل ہوں گے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو, میں تمہیں عطا کروں گا. سورہ مومن آیت نمبر 63. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے. دیکھیں ہم جتنا بھی اللہ سے مانگے نا, اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آنے والی. دنیا میں تو آپ کسی سے کچھ مانگتے ہیں ایک سے دو, دو سے تین دفعہ, تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. بلکہ اس کو اگر ادب کر کے دیکھیں تو بھی بات زیادہ سمجھ میں آتی کہ جب ہم سے کوئی بار بار چیز مانگنے لگتا ہے تو ہم پر بھی وہ ناگوار گزرنے لگتا ہے, رائٹ. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کچھ الگ ہی ہے. ان سے نہ مانگے تو ان کو برا لگتا ہے, اور وہ ہم سے بدلے میں کچھ نہیں مانگتے. بار بار مانگے انہیں اور اچھا لگتا ہے. تو آج یہ مجلس جو سجائی گئی اس کے پیچھے مقصد ہی یہ کہ ہم اپنے اندر اس احساس کو بیدار کریں. پتہ ہے ہم سب کو یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہو رہی, ساری پرانی باتیں سب کے علم میں یہ باتیں, بلکہ زیادہ ہوں گی آپ کے علم میں شاید. لیکن بات کس بات, ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم اپنی اس کیفیت کو بیدار کریں, اپنے آپ کو جگائیں کہ ایک انتہائی مبارک مہینے سے ہم گزر رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو یہ مہینہ گزر جائے اور ہمارے ہاتھ خالی رہ جائے. کیونکہ دعائیں صرف انہی چیزوں کو نہیں کہا جاتا ہے جو ہمیں مطلوب ہوتی ہیں, بلکہ دعاؤں سے آفات بھی ٹل جاتے. کیسے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا نازل شدہ آفات اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی سب کے لیے نفع بخش ہے, لہٰذا اے اللہ کے بندوں دعا ضرور کیا کرو. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. یعنی دعا کرنے والا جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کبھی بھی محروم نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں رہنے دیتے کہ کوئی دعائیں مانگے چلا جا رہا ہوں اور وہ ویسٹ ہو جائے. نہیں, نو وے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے کہ ایسا کچھ ہو جائے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھولا گیا, یعنی دعا کی توفیق دی گئی, اس کے لیے گویا رحمت کے دروازے کھول دیے گئے, اور جو چیز اللہ سے مانگنی چاہیے ان میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عافیت ہے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. عافیت کیا چیز؟ ایک تو ہم دعا مانگتے ہیں نا, اس کی ایک بڑی اچھی مثال ہمارے ایک بزرگ نے دی تھی, اللہ ان کی مغفرت کرے, کہ ایک شخص جو ہے وہ مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے گاڑی چاہیے, گاڑی چاہیے, گاڑی چاہیے, فلانی گاڑی چاہیے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دیتے ہیں, اس کو گاڑی بھی مل جاتی, لیکن کچھ ہی دن کے بعد اسی گاڑی میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, رائٹ. تو یہ جو عافیت ہے نا, یہ مکمل دعا ہے. جب بھی کوئی بھی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگے ساتھ ساتھ یہ دعا کریں, اے اللہ عافیت کے ساتھ مجھے عطا کر, یا اللہ اس میں عافیت کاملہ, عافیت دار ڈال دے. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ تو بہت ہی باہیا ہیں, رائٹ. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب بڑا حیا کرنے والا ہے اور سخی ہے. جب بندہ اس کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے تو انہیں خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے اسے شرم آتی ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کسی نہ کسی صورت میں ضرور قبول کرتے ہیں. دیکھیں زندگی میں بہت سارے مسائل آتے ہیں, چھوٹے بڑے. سب سے پہلا کام جو اپنا ایک طریقہ بنا لیں وہ کیا, جو بھی مسئلہ ہو چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ, اللہ سے رجوع کرے, اللہ سے مانگے پہلے, پھر اس کے بعد کچھ اور کام کرے. ٹھیک ہے. اچھا, دعا کے کچھ آداب بھی ہوتے ہیں. यानी दुआ करने से पहले अल्लाह की हम्द व सना की जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा जाए। हम्द व सना के लिए आप फातिहा भी पढ़ सकते हैं, और भी बहुत सारी छोटी छोटे अस्कार हैं जिनमें अल्लाह की हम्द व सना है, और दुरूद इब्राहिम भी पढ़ सकते हैं, और कोई छोटा दुरूद भी, राइट। और दुआ जो है दिल जमी के साथ दो टोक अल्फाज में मांगनी चाहिए। क्या मतलब इस बात का, यानी इसकी वजाहत जो है आपको एक हदीस से पता चलेगी कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला के अन्हा फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई दुआ करे तो अल्लाह से पुख्ता इरादे के साथ सवाल करें, और यूँ ना कहे कि ए अल्लाह अगर तू चाहे तो अता फरमा, इसलिए कि अल्लाह पर कोई ज़बरदस्ती नहीं जो उसकी दुआ को जो है रोक ले। इसे बुखारी ने रवायत किया। यानी आपको जो मांगना है वो मांगिए, और साथ में ये ज़रूर बोलिए कि या अल्लाह इसमें खैर डाल दे, इसमें आफियत डाल दे, राइट। और हाँ, एक ख़ास बात, ख़ास बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, वो क्या कि दुआ मांगते वक्त कबूलियत का मुकम्मल यकीन होना चाहिए, राइट। और यकीन जाने, ये हकीकत है, मैं इसका पर्सनल एक्सपीरियंस बारहा करती रही कि जब भी मैंने अल्लाह से यकीन के साथ दुआ मांगी, वो अल्लाह ने मुझे लाजम वैसे के वैसे ही अता किए। तो ज़रूरत किस बात की कि हम अपने अंदर यकीन और तवक्कुल भरपूर अल्लाह के लिए पैदा करें, तो वो ज़रूर हमारी दुआओं को कबूल करेगा। इसी तरह दुआ पूरी तवज्जो और यकसुई के साथ मांगनी चाहिए। हाथ उठा के दुआ मांगना मसनून है, लेकिन हाथ उठाए बगैर भी दुआ करना जायज़ है, राइट। थोड़ा सा और देखते हैं कि दुआएं किन औकात में कबूल होती। रात के आखिरी हिस्से में दुआ कबूल की जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, कि हमारा रब हर रात जब आखिरी तहाई हिस्सा बाकी रह जाता है तो आसमान दुनिया पर उतरता है और फरमाता है, कौन मुझसे दुआ करता है मैं उसकी दुआ को कबूल करूँ, कौन मुझसे कुछ मांगता है मैं उसको दूँ, कौन मुझसे गुनाहों को माफ़ी चाहता है मैं उसके गुनाह माफ़ कर दूँ। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। तो आजकल तो बेहतरीन महीने से हम लोग गुजर रहे हैं, सहर में उठते ही हैं, तो जो भी वक्त है उससे थोड़ा 15-20 मिनट पहले उठकर अल्लाह सुबहाना तआला से अपना ताल्लुक जो है और मजबूत कीजिए, और अल्लाह सुबहाना तआला से जो मांगना है मांगिए, क्योंकि ना सिर्फ सहर है ये बल्कि मुबारक महीना भी है। तो हमें तो इस दुआ को मांगने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होनी चाहिए। इसी तरह अजान और अकामत के दरमियान दुआ कबूल होती है, राइट। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अजान और अकामत के दरमियान दुआ रद्द नहीं की जाती। ये जब अजान होती है और अकामा का वक्त होता है ना, उस दौरान के बीच में ज़रूर दुआ मांगा करें, राइट। और कब कब दुआ कबूल होती है, जब आप सजदे के हालत में होते। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सजदे की हालत में बंदा अपने रब के बहुत करीब होता है, लिहाजा सजदे में कसरत से दुआ किया करो। यानी दुआ करें और सजदे में जाकर दुआ करें, तो ये और आपके लिए फ़ायदेमंद होगा इंशाल्लाह। इसी तरह जुमे के दिन किसी एक घड़ी में दुआ जो है कबूल की जाती है, तो जुमे के दिन भी ज़्यादा से ज़्यादा इंसान जो है दुआओं में लगा रहे। अजान के बाद दुआएं जो हैं वो भी कबूल की जाती हैं, वो भी दुआएं जो है रद्द नहीं की जाती। बारिश नाजिल होने के वक्त हैं, बारिश जब नाजिल होती है उस वक्त भी दुआ कबूल की जाती है। और हम तो बड़े ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ हर दूसरे तीसरे दिन जो है बारिश हो रही होती है, राइट। इसे हज़रत सुहेल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो वक्त की दुआएं रद्द नहीं की जाती या बहुत ही कम रद्द की जाती हैं, पहली अजान के बाद और दूसरी बारिश नाजिल होने के वक्त। और एक और तरफ आपको रिमाइंड कराऊं कि जमजम पीने से पहले भी दुआ कबूल होती है, यानी इसको भी, इसके लिए भी हदीस सुनिए। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जमजम का पानी जिस नियत से पिया जाए वो पूरी होती है, राइट। तो जमजम तो मेरा ख्याल है हर घर में रहता ही है किसी ना किसी शक्ल में, तो ज़रूर उसको इस्तेमाल कीजिए और अपनी दुआएं को दुआओं को कबूल करवाइए अल्लाह सुबहाना ताला से। और वो कौन लोग हैं जिनकी दुआएं कबूल की जाती हैं, जैसे मज़लूम की दुआ कबूल होती है, मुसाफिर की दुआ कबूल होती है, जब भी आप सफ़र कर रहे हो। और देखिए हम अगर आप मेरे घर आ रही हैं, मैं आपके घर जा रही हूँ, तो ये क्या, ये भी तो सफ़र ही है ना, गाड़ी में बैठे हुए, उस वक्त भी हम दुआ कर सकते हैं, उस वक्त भी अल्लाह सुबहाना ताला दुआओं को कबूल करेगा। और जो लोग लंबे लंबे सफ़र पे जा रहे हैं तो उनके लिए तो बहुत ही बेहतरीन मौका होता है। बाप की दुआ बेटे के हक़ में कबूल होती है, हज और उमरा करने वाले की दुआएं जो है कबूल होती हैं, और नेक औलाद की दुआ वालदैन के हक़ में दुआ कबूल की जाती है, और इसी तरह रोज़ेदार की दुआ कबूल की जाती है। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन आदमियों की दुआ रद्द नहीं की जाती, बाप की, रोज़ेदार की और मुसाफिर की। इसे बेहकी ने रवायत किया है। इसी तरह बीमार जो होता है उसकी भी दुआ कबूल की जाती है। तो अगर कोई बीमार हो तो उससे भी आप कह सकते हैं, या ख़ुद भी कोई बीमारी हो जाए, जैसे इवन नज़ला ज़ुकाम खांसी भी हो गई, तो भी इंसान उसमें दुआ कर सकता है। एक नज़र उन चीज़ों को भी देख लें कि किस में दुआएं कबूल नहीं होती, जैसे हराम रिज़्क़ खाने वाले की, राइट, क़त्अ ताल्लुक़ करने वाले की, क़त्अ रहमी यानी अपने करीबी रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से, गफलत और लापरवाही से दुआ करने वाले की दुआ कबूल नहीं होती, जानी की दुआ कबूल नहीं होती, ज़बरदस्ती टैक्स वसूल करने वाले की दुआ कबूल नहीं होती। इसी तरह अमल बिन मारूफ और नहीं अनिल मुनकर यानी नेकी का हुक्म देना और बुरे कामों से रोकने को ना रोका अगर जाए, तो उस वक्त भी फिर दुआएँ कबूल होना बंद हो जाती हैं। और इसकी दलील हमें मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम अमर बिलमारूफ और नहीं अनिल मुनकर करते रहो, वरना अनकरीब अल्लाह तुम पर अपनी तरफ से अजाब नाजिल करेगा, फिर तुम उससे दुआ करोगे और वो तुम्हारी दुआ कबूल नहीं करेगा। और शायद इसीलिए आज मुसलमानों का यह हाल है, क्योंकि हमने एक अहम फरीदा जो है छोड़ दिया, फरामोश कर दिया उसको। इसी तरह अगर कोई किसी को दुआ करने को कहे तो ये काम भी करना, इस तरह से करना भी जायज़ है। और दुआ में अल्लाह ताला के नाम, उसकी सिफात का वसीला बनाना भी जायज़ है। मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप लोगों को जो एवरी डे का अस्कार दिए जा रहे हैं उसमें सबसे पहले अल्लाह सुबहाना ताला के नाम ही है, राइट, और मीनिंग के साथ है। वो सिर्फ चार डेली के हिसाब से दिए जा रहे हैं, और अगर आप वाकई उस पर अमल करते हुए उसको याद कर रहे हैं और हर नमाज में उस नाम के ज़रिए अल्लाह से दुआ करें, राइट, क्योंकि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद ख़ास तौर पर दुआएं जो है कबूल होती हैं, तो उसमें साथ एडिशनल आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि अल्लाह के इन सिफ़ात को ऐड कर लीजिए, तो एंड ऑफ द रमज़ान इंशाल्लाह पूरे 99 नाम आपको याद हो जाएंगे। और मायने के साथ याद रखिए ताकि जब भी आप जो भी नाम अल्लाह का बोलें दुआ में, तो वो कैफियत आपके अंदर आनी चाहिए, राइट, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं किस नाम से अल्लाह सुबहाना व तआला को याद कर रही हूँ, और फिर दुआ करें तो दुआएं जो हैं ज़रूर कबूल होंगी। इसी तरह दुआ में नेक आमाल का वसीला बनाना भी जायज़ है। एक छोटा सा वाक़या शायद आपने सुना हो, लेकिन एक रिमाइंडर के तौर पर, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन आदमी जा रहे थे, उन्हें बारिश ने आ लिया, चुनांचे एक पहाड़ के गार में छुप गए, गार के मुंह पर पहाड़ के ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर आ गिरा और वो बंद होकर रह गए। चुनांचे वो आपस में कहने लगे कि कोई ऐसा नेक अमल सोचो जो तुमने महज अल्लाह को राज़ी करने के लिए किया, और उसके वसीले से अल्लाह से दुआ करो, शायद ये मुश्किल आसान हो जाए। चुनांचे उनमें से एक ने कहा, ए अल्लाह, मेरे वालदैन जिंदा थे और इंतहाई बुढ़ापे की उम्र को पहुँचे थे, मेरे छोटे छोटे बच्चे भी थे, मैं इनके लिए बकरियां चराया करता था, जब मैं शाम को वापस लौटता तो बकरियां धोता और अपने बच्चों से पहले वालदैन को दूध पिलाया करता था, एक रोज़ जंगल में दूर निकल गया और शाम को देर से घर आया, वालदैन उस वक्त तक सो चुके थे, मैं हसब मामूल दूध लेकर दोनों के सिरहाने खड़ा रहा, मगर मैंने उन्हें नींद से बेदार करना पसंद नहीं किया और बच्चों को उनसे पहले पिलाना भी मुझे अच्छा ना लगा। हालांकि बच्चे मेरे कदमों के पास शोर गुल कर रहे थे, यहाँ तक कि सुबह हो गई। और ए अल्लाह, तू जानता है कि मेरा ये काम सिर्फ तेरी रजा हासिल करने के लिए था। और फिर वो पत्थर ज़रा सा हट गया। उसके बाद दूसरे ने कहा, ए अल्लाह, मेरी चचाजात बहन थी जिससे मैं इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता था कि जितना कोई भी दूसरा आदमी किसी औरत से कर सकता हो। मैंने उससे अपनी दिली ख्वाहिश का इजहार किया तो उसने उस वक्त तक के लिए इनकार कर दिया जब तक उसे 100 दीनार ना दे दूँ। चुनांचे मैंने दौड़ धूप शुरू की और 100 दीनार जमा कर लिए। मैं उन्हें लेकर उसके पास गया। जब मैं उससे सोबत करने चला तो उसने कहा, ए अल्लाह के बंदे, अल्लाह से डर और लगी हुई मोहर को ना तोड़। बस मैं वापस चलाया, ए अल्लाह, अगर मैंने ये काम महज तेरी रजा के लिए किया था तो तू मेरी इस मुश्किल को आसान कर दे। और फिर चट्टान का पत्थर दोबारा थोड़ा सा और हट गया। तीसरे ने कहा, ए अल्लाह, मैंने एक मजदूर को अपने काम पर लगाया था और तय किया था कि तुम्हें एक फ़र्क यानी तकरीबन 8 किलोग्राम चावल दूंगा। जब वो काम ख़त्म कर चुका तो उसने अपनी मजदूरी का मुतालबा किया। मैंने मजदूरी उसके सामने रख दी लेकिन वो मजदूरी कम समझ कर लिए बगैर चला गया। मैं इन चावलों के साथ बराबर काश्तकारी करता रहा यहाँ तक कि इससे एक गाय खरीद लिया और एक चरवाहा रख लिया। मुद्दतों बाद वो मेरे पास आया और कहने लगा, अल्लाह से डर और मुझसे जुल्म ना कर, मेरा हक मुझे अदा कर। मैंने कहा, इन गायों और चरवाहे की तरफ जाओ, ये सब तुम्हारा माल है। उसने कहा, अल्लाह से डरो और मेरे साथ मजाक ना करो। मैंने कहा, मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं करता, बल्कि ये अपनी गायें और चरवाहा ले जाओ। वो उन्हें लेकर चला गया। या अल्लाह, तू जानता है कि मैंने महज तेरी रजा के लिए ऐसा किया। जितना रास्ता बंद रह गया था वो भी फिर खुल गया। तो उम्मीद है कि हम भी कुछ ऐसे ही काम नेकियां करें। लेकिन इंसान अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई नेकी ऐसी ज़रूर करता है जिसका किसी को खबर ही नहीं होती कानों का, राइट? तो उन नेकियों को याद करके अल्लाह से फिर अपनी दुआएं मांगना, ये भी हमें सबूत मिलता है। अच्छा, ये बात जहन में रहे कि दुआ में जो एक वज़न वाला स्टाइल होता ना, उस अंदाज में दुआएँ नहीं मांगनी चाहिए। लाइक अशार का अंदाज जो होता है, ठीक है, इसी तरह ऐसी दुआ भी नहीं करनी चाहिए कि अल्लाह तो दुनिया में मुझे सज़ा दे दे, आखरत में ना दे, हैं। बल्कि अल्लाह ताला से हमेशा अच्छा जन रखना चाहिए और ये दुआ करनी चाहिए कि ए अल्लाह, तो हमें दुनिया में भी आफियत अता कर और आखरत में भी। इसीलिए हमें वो दुआ सिखाई गई ना, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनत व फिल आखिरति हसनत व क़िना अज़ाबन्नार। दुआ क्या मांगनी चाहिए? वैसे तो ये एक पर्सनल बात भी है, दूसरी के कुरान और हदीस से बहुत सारी दुआएं साबित भी हैं। लेकिन जो इंसान की फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए वो क्या है? वो हिदायत होनी चाहिए, राइट? तो हसूल हिदायत और बीमारी से शिफा हासिल करने के लिए सबसे बेहतरीन दुआ क्या है? सूरह फातिहा। सूरह फातिहा बेहतरीन दुआ है, राइट? कोई बीमारी हो तो भी पढ़ के उसको फूकिए, कोई तकलीफ़ हो रही है उसको पढ़िए और हाथ में फूकिए और वहाँ पर रब कर दीजिए। और इसी तरह इसकी मीनिंग को जहन में रख कर अगर इंसान दुआ मांगे तो मुमकिन ही नहीं कि वो भटक जाए। खात्मा बिल खैर की दुआ है, अल्लाह ताला से ये दुआ ज़रूर मांगनी चाहिए कि अल्लाह, तू हमारा खात्मा खैर के साथ कर, हमारी ज़बान पर तेरा नाम हो, तेरा कलमा हो जब हमारे ये मौत के फरिश्ते आने वाले हों। इसी तरह अफ्तार के वक्त की दुआ भी जो है कबूल होती, राइट? और कोशिश करें, हमने अपने पिछले लेक्चर में भी इस बात पे बहुत ज़ोर दिया था कि असर के वक्त तक आप अपने तमाम काम जो हैं ख़त्म करें और उसके बाद कुरान हो, आप हो, जिक्र अस्कार हो, दुआएं हो, तो तमाम दुआएं उठाइए। और आपको दुआएं भी दी गई हैं सुबह शाम की, आपके वेबसाइट पे भी अपलोड हैं, आप उसको प्रिंट कर लीजिए, अपने पास रखिए और तमाम दुआओं को कोशिश कीजिए कि उनको डिवाइड कर लीजिए और हर नमाज के साथ कुछ ना कुछ दुआ ज़रूर मांगिए, कुरानी दुआएं भी और मसनून दुआएं भी। और कोशिश करें कि जामे दुआएं मांगें, यानी मुकम्मल दुआएं मांगें, जैसे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतौ व फिल आखिरति हसनतौ व क़िना अज़ाबन्नार। इसी तरह अल्लाह के अज़ाब और ग़ुस्से से पना मांगने की दुआ करनी चाहिए, بدبختی اور بری تقدیر سے کہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. فکر، غم، کمزوری، سستی، بزدلی، ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھنے کی دعائیں ہمیں سکھائی بھی گئی ہیں، آپ پڑھتے بھی ہوں گے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن. اور آخر میں سب سے اہم بات وہ ہے توبہ و استغفار، اس نیت کے ساتھ کہ ہم دوبارہ وہ کام نہیں کریں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب اعتراف گناہ کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں. اسے بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے جب تک انسان پر نزا تاری نہ ہو جائے. یعنی دروازہ کھلا ہوا ہے توبہ کا، ہر وقت ہر لمحے انسان جب چاہے اپنے گناہوں کی معافی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگ سکتا ہے. اور جو توبہ نہیں کرتے، توبہ نہ کرنے سے انسان کا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے. اگر توبہ استغفار کرے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اگر مزید گناہ کرتا چلا جائے تو نقطہ جو ہے وہ، یعنی سیاہ رنگ جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اور یہی وہ زنگ ہے جس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے، کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ہرگز نہیں، بلکہ ان کے اعمال کے باعث اللہ نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا. یہ بالکل ایسے ہی نا کہ اگر آپ ایک برتن کو، ایک پتیلی کو دھوئیں نہیں، اس میں کچھ آپ کو پکاتے ہوئے لگ جائے، جل جائے، ہلکا سا اس کے نیچے لگ جائے، اگر آپ اس کو دھوئیں گے نہیں اور چولہے پہ وہ چڑھا ہی رہے گا تو کیا ہو بتائیں، کیا ہو؟ وہ پتیلی جل کے کوئلہ بن جائے گی، زنگ لگ جائے گا نا. کہ پھر اس کو صاف کرنا ہے کہ وہ قابل نہیں رہے گا، پھر آپ کیا کہیں گے، اس کو گاربیج کر دو تو بہتر، کون صاف کرے، کر ہی نہیں سکتے. کر بھی دیں، کوشش بھی کریں تو وہ بات نہیں آئے گی. لیکن بہترین وہی عورت ہوتی ہے جو جیسے ہی کوئی چیز گندی ہوئی فوراً اس کی صفائی کر دی تو وہ مینٹین رہتا. بالکل ایسے ہی انسان کا دل ہے، جیسے ہی کوئی غلطی ہوئی، یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، لیکن جیسے ہی کوئی غلطی فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا، اس سے معافی مانگی اور اس سے طلب بھی مانگی مدد کی کہ تو میری مدد کر، آئندہ میں یہ گناہ پھر نہ کر سکوں. اور ایک خوشخبری کہ مبارک ہے وہ شخص جو اپنے نام اعمال میں کثرت سے استغفار کرے. یہ حدیث ہے، اسے حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے ابن ماجہ سے. یعنی استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیں. کتنے ہی زندگی کے وقت جو ہیں، اپنے 24 گھنٹے کو اگر ہم غور کریں تو ہمارے ان 24 گھنٹوں میں کیا ہم ہر وقت بیزی رہتے ہیں؟ ہماری زبان جو ہے ہر وقت بیزی رہتی ہے؟ نہیں، کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی ہم فارغ بیٹھے ہوتے ہیں، رائٹ؟ گاڑی چلا رہے ہیں، گھر میں اکیلے ہیں، آفس میں تو وہاں پہ بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو انسان اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے. آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں انشاءاللہ. آج کا یہ لیکچر بیسیکلی ہم سب کے لیے ایک ریمائنڈر ہے کہ اس مبارک مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کر سکیں. ہم سب ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر اسی ٹائم پر ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ. اور ٹاپک ہوگا ہم شب بیداری اور رمضان انشاءاللہ. دعا کرتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے، اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.